चाहता केवल एक मेघ से स्वाति की बूंद चाहता है, न दूसरे की ओर ताकता है, न दूसरा जल स्पर्श करता है। वो इस चातक के टेक का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चाहे तुम समय पर बरसो और चाहे जीवन भर कभी न बरसो, परंतु इस चित्त चातक को तो केवल तुम्हारी आशा है। रटत रटत रसना लठी तृषा सूख गए अंग, तुलसी चातक प्रेम को नित्य नूतन रुचि रंग। अपने प्यारे मेघ का नाम रटते रटते चातक की जीभ लट गई और प्यास के मारे सारे अंग सूख गए, तो भी चातक के प्रेम का रंग तो नित्य नवीन और सुंदर ही होता जाता है। बरख परुख पाहन पयद पंख करो टुक टुक, बरख परुख पाहन पयद पंख करो टुक टुक, तुलसी परी न चाहिए चतुर चातक ही चूक। समय पर मेघ बरसा तो है ही नहीं, उसने उल्टे कठोर पत्थर ओले बरसा कर चातक के पांखों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इतने पर भी उस प्रेम ट्रे की चतुर चातक के प्रेमपण में कभी चूक नहीं पड़ती। पवि पांडव पवि पाहन दामिन गरज झर झकोर खरी खीज, बड़ा सुंदर ये पवि पाहन दामिन गरज झर झकोर खरी खीज, रोशन प्रीतम दोष लखी तुलसी राग ही रीज। मेघ बिजली गिराकर ओले बरसाकर बिजली चमकाकर कड़क कड़क कर वर्षा की झड़ी लगाकर और तूफान के झकोरे देकर चातक पर चाहे जितना बड़ा भाई रोष प्रकट करे, पर चातक को प्रियतम का दोष देख क्रोध नहीं आता, उसे दोष दिखता ही नहीं, पर इसमें भी वो अपने प्रति मेघ का अनुराग देख कर बीत जाता। अरे वो मुझ पर बरसाता है ना, मुझको अपना मानता है ना। एक चातक जा रहा, गर्मियों के थे दिन, चातक शरीर से था थका हुआ, रास्ते मुड़ा जा रहा, शरीर जल रहा। इतने में कुछ वृक्ष दिखाई दिए, दूसरे साथी पक्षियों ने कहा भी जा इन पर विश्राम कर लो, पर तो अनन्य प्रेमी चातक को ये बात अच्छी नहीं लगी। उष्ण काल अरु देह खिन मग पंखी कन ऊख, उष्ण काल अरु देह खिन मग पंथी तन ऊख, चातक बतिया ना रुचि अनजल सींचे रूख। अनजल सींचे रूख, एक चातक उड़ा जा रहा आकाश में, किसी बहेली ने बाण मार दिया, बाण से बिंध गया। बजो बधक परे पुण्य जल उलटी उठाई चोंच, तुलसी चातक प्रेम पट मरत हूं लगी न खोच। बजो बधक परे पुण्य जल उलटी उठाई चोंच, तुलसी चातक प्रेम पट मरत हूं लगी न खोच। ये चातक उड़ा जा रहा, किसी बहरिये ने उसे बाण मार दिया, वह नीचे पुण्य सलीला गंगा जी में गिर पड़ा, जिसके एक बूंद चाहते हैं हम लोग, मरने के बाद भी स्पर्श हो जाए तो गति मानते है ही ऐसी बात। परंतु वो प्रेम ट्रेकी चातक गंगा जी में गिर के मरा, पर मरते समय उसने चोंच ऊपर को उठा ली उलट कर। क्यों? कहीं गंगा जल का स्पर्श न हो जाए चोंच से। इस प्रकार चातक के प्रेम रूपी वस्त्र पर मरते समय तक भी चोट नहीं लगी। तो बात क्या है, जहां प्रेम होता है वहां दोष दिखते नहीं। चढ़ते हैं चातक चित कब प्रिय पयोध के दोख, तुलसी प्रेम पयोध की ताते मापन जोख। चातक प्रेमी है अतः उसके चित्त में प्रियतम मेघ का दोष कभी आता ही नहीं, क्योंकि वे प्रेम का अगाध समुद्र है, वहां माप तौल नहीं है। प्रेम देना जानता है लेना नहीं, प्रेम का बदला चाहना हो, चाहना तो वास्तव में प्रेम है ही नहीं, वह तो लेन देन का व्यापार है। इसी से कहा गया है भोग मोक्ष इच्छा पिशाचनी, जब तक करती मन में वास तब तक पावन दिव्य प्रेम का कभी न होता तनिक विकास। भुक्ति मुक्ति स्प्रिया यावत पिशाची हृदय वर्तते। तो अतएव इस पथ पर आना चाहने वाले व्यक्ति को पहले निश्चय कर लेना चाहिए कि विषय भोग के साथ भगवत प्रेम का कदापि मेल नहीं है। भोग सुख भी रहे और भगवान का पवित्र प्रेम भी मिल जाए, ये वैसी मूर्खतापूर्ण बात है कि रात्रि भी रहे और सूर्य का उदय भी हो जाए, अथवा किसी का मरना भी बंद न हो और वो अमर भी हो जाए। इसलिए इस प्रेम मार्ग के पथिक को अहम के सुख की इच्छा का और अहम की स्मृति का भी त्याग करने की तैयारी करके इस मार्ग पर पैर रखना चाहिए। जो अपने सर्वस्व को स्वाहा करके उसके भस्मावशेष पर आनंद मत होकर नाच सकता है, वही इस सर्व त्यागी परम पावन प्रेम पथ का पवित्र पथिक बन सकता है। कबीर ने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। सुतराम, गोपी प्रेम के आधार पर भगवत प्रवाह के बहने के लिए सर्व त्याग का आदर्श सामने रखकर साधना में प्रवृत्त होना चाहिए। किसी सर्व त्यागी ऐसे गोपी रूप रसमय प्रेमी जन को ही अपना पथ प्रदर्शक बनाकर आगे बढ़ना चाहिए और सदा ये देखते रहना चाहिए कि भगवत प्रीति और भोगों से उपरति, भगवान की आत्यंतिक अखंड स्मृति और जगत प्रपंच की विस्मृति और उत्तरोत्तर भगवत सेवा में प्रवृत्ति और सुसुख वासना की निवृत्ति होती जा रही है या नहीं, उत्तरोत्तर बढ़ रही या नहीं, यही कसौटी है इस परम पवित्र प्रेम के साधन की। राधा माधव दोनों नित्य अभिन्न होते हुए भी नित्य लीला पारायण है, उनमें एक दूसरे को सुखी बनाने की ये प्रेम लीला सदा चलती रहती। और प्रेम मूर्ति श्री गोपांगनाएं अपने को भूल कर राधा माधव के सुख सामग्री के संग्रह में लगी रहती है। गोपी का स्वभाव या स्वरूप है कि राधा माधव को सुखी करना और राधा का स्वभाव स्वरूप है श्री कृष्ण को सुखी करना। सर्वत्र त्याग ही त्याग, इसी से ये लीला सर्वश्रेष्ठ और परमोच्च सिद्धि की के क्षेत्र की है। इससे इसमें लौकिकता देखना या लौकिक समझकर इसका अनुकरण करने जाना सर्वथा अनुचित और अत्यंत हानिप्रद है। न तो इनकी लीला में संदेह करना चाहिए और न लीला का अनुकरण ही करना चाहिए। समर्पण की भाव साधना चलनी चाहिए, किसी त्यागमयी गोपी को आदर्श मानकर संयम और त्याग के प्रशस्त पवित्र पथ से। श्री राधा और कृष्ण की पवित्रतम दिव्य लीला में जो कलुषित काम की कल्पना होती है उसका प्रधान कारण हमारी काम कलुष दृष्टि है। और श्री कृष्ण को अस्थिमान समय जड़ शरीरधारी मानव बुद्धि श्री कृष्ण में, पर यदि हम उन्हें साधारण मनुष्य मानते हैं तब तो श्रीमद् भागवत के अनुसार श्री कृष्ण केवल 11 वर्ष की अवस्था तक ही नंदालय में थे और कई वर्ष पूर्व से ही ब्रजांगनाओं की मधुर लीला चल रही थी। अतः इस लीला का समय श्री कृष्ण की 7-8 वर्ष की अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। 7-8 वर्ष की अवस्था, 7-8 हाँ रासो। अतएव ये काम क्रीड़ा कदापि नहीं, परंतु वास्तव में श्री राधा माधव तो प्राकृतिक 8 में करीब भूत समोस। अतएव उनमें कलुषित काम की कल्पना एक महान अपराध है और हमारा घोर पतन करने वाला है। थोड़ा सा और है, इसी प्रकार लोग बार बार राधा कृष्ण के विवाह की बात पूछते हैं, कई प्रश्न आए थे अब की, इसीलिए इसका थोड़ा उत्तर थोड़ा सा रह गया। इसमें भी उनके स्वरूप का ज्ञान ही कारण है, जो नित्य एक हैं, जिनमें कभी भेद की कल्पना नहीं, जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, उनमें परस्पर विवाह होने न होने का कोई प्रश्न उठता ही नहीं। तथापि महानुभाव उनका विवाह भी देखते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा एकांत कानन में उनके विवाह कराए जाने का वर्णन मिलता है। इसके साथ एक प्रश्न और आजकल आ रहा है, वो यह है राधा जी का किसी अन्य गोप के साथ विवाह। कि राधा जी के रायण गोप के साथ विवाह की बात आती है, रायण ये यशोदा के भाई थे, उसमें श्री राधा का श्री रामा का शाप कारण था, परंतु वह विवाह भी स्वयं राधा जी के साथ नहीं छाया के साथ हुआ। मैंने किसी ग्रंथ की एक बात माने दूसरी न माने ये तो ठीक नहीं। जिस ग्रंथ में रायण के साथ विवाह का उल्लेख है उसी ग्रंथ में राजा के साथ न होने का उल्लेख। तो ये विवाह राधा जी के साथ नहीं छाया के साथ हुआ था ऐसा स्पष्ट उल्लेख मिलता है। वहां लिखा है राधा जी अयोनिजा थी, माता के पेट से पैदा नहीं हुई, माता ने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहां स्वेच्छा से राधा प्रकट हो गई। 12 वर्ष बीतने पर उन्हें यौवन में प्रवेश करती देख माता पिता ने रायण गोप के साथ उनका संबंध निश्चित किया। उस समय श्री राधा घर में छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर्धान हो गई। उस छाया के साथ उक्त रायण का विवाह हुआ। वास्तविक श्री राधा का विवाह तो हुआ था पुण्यमय वृंदावन में कृष्ण के साथ, जगत सृष्टा विधाता ने विधि पूर्वक संपन्न कराया था। अयोनि संभवा देवी, वहां के श्लोक है, अयोनि संभवा देवी वायु गर्भा कलावती सुषाव मलया वायुम सा तत्रांधिर्बभूव अतीते द्वादशाब्दे तु दृष्ट्वा त्वां नव यौवनां सार्धं रायण वैश्येन तत्सम्बन्धं चकारस छायां संस्थाप्य तद्देह सान्तर्धानं चकारः बभूव तस्य वैश्यस्य विवाह छायया सह। कृष्णेन सह राधाया पुण्य वृंदावने बने विवाहम कारयामास विधना जगताम जगताम निधि। और ये राधा की छाया कौन थी इसका भी स्पष्ट उल्लेख उस पुराण में है। केदार राज की कन्या, केदार राज कोई थे, केदार राज की कन्या वृंदावन के तप करने पर भगवान ने उसको ये वर दिया था कि इस तपस्या के फल रूप तुम मुझे प्राप्त करोगी। फिर ब्रज में असली राधा की जीत जब वृषभानु की कन्या के रूप में अवतीर्ण होगी तब तुम छाया के रूप में उत्पन्न होगी। विवाह के समय रायण छाया रूपणी तुमसे विवाह करेगा और वो वास्तविक राधा तुमको रायण के हाथों में अर्पण करके अंतर्धान हो जाएगी। गोकुलवासी मूढ़ लोग रायण पत्नी तुम्ही को राधा माने रहेंगे। उस समय असली राधा तो मेरे पास निवास करेगी और छाया रूपणी तुम रायण की स्त्री होकर जीवन यापन करोगी। ये स्पष्ट शब्द है। राधा वृषभानु सुता यदा सा एव वास्तवी राधा, बिल्कुल ये शब्द है, सा एव वास्तवी राधा त्वं च छाया स्वरूपिणी विवाह काले रायण त्वं च छायां गृहीष्यति ताम दत्वा वास्तवी राधा सांतर्धाना भविष्यति राधाम कृत्वा चताम मूढ़ा विद्या संत च गोकुले स्वयं राधा मम क्रोड़े और छाया रायण कामिनी। अतः यह सिद्ध है कि ये छाया भी वास्तव में राधा के नहीं, अतः वह भी केदार कन्या वृंदा का अवतार है। इससे कदापि सिद्ध नहीं होता कि वास्तविक राधा किसी राधा का किसी अन्य गोप से विवाह हुआ था। पर इस विषय में विवाद करना व्यर्थ है। यहां तो उन राधा का प्रसंग है जो भगवान श्री कृष्ण की नित्य भिन्न रूपा है, सर्वेश्वरी मूल प्रकृति है, सर्वदेवी स्वरूपिणी है, जगत जननी है, श्री कृष्ण की परम आराधिका है, श्री कृष्ण की परमाराध्या है और उनकी साक्षात आत्मा ही है। श्री कृष्ण ने कहा है यथा क्षीरी च धावल्यम दायिका च हुताशने भूमौ गंधो जले शैत्यम तथा त्वयि मम स्थिति है धावल दुग्धयोरैक्यम दायिका नलयोर यथा भूगंध जल शैत्यानाम नास्ति भेद तथा वयो मया बिना त्वम निर्जीवा चा दृश्यो हम त्वया बिना। जैसे दूध और उसकी धवलता में अग्नि और उसकी दायिका शक्ति में भूमि और गंध में जल और उसकी शीतलता में कोई भेद नहीं, वैसे ही तुम में मुझ में कोई अंतर नहीं। जैसे धवलता और दूध अभिन्न है, दायिका शक्ति और अग्नि अभिन्न है, भूमि तथा गंध और जल और शीतलता अभिन्न है, वैसे हम दोनों भी एक हैं, कोई भेद नहीं। मेरे बिना तुम निर्जीव हो, मैं तुम्हारा जीवन हूं, और तुम्हारे बिना मैं अप्रकट हूं। लीला प्रकट नहीं होता। परम प्रधानम परमम परमात्मानम ईश्वरम सर्वाद्यम सर्व पूज्यम च निरीहम प्रकृति परम स्वेच्छामयम नित्य रूपम भक्तानुग्रह विग्रहम तस्य प्राणाधिकाराधा बहु सौभाग्य संयुक्ता महाविष्णु प्रसूसा च मूल प्रकृति ईश्वरी। श्री कृष्ण सबसे प्रधान परमात्मा परमेश्वर, सबके आदि कारण, सर्व पूज्य, निरीह और प्रकृति से परे वर्तमान है। राधिका जी स्वयं कहती हैं मूल प्रकृति है। इस हिसाब से राशब्दस्य महाविष्णुर विश्वानीयस्य लोमसु विश्व प्राणिसु विश्वेशु धात्री मातृवाचक धात्री माता मेतेषां मूल प्रकृतिरीश्वरी तेन राधा समाख्याता हरिना च पुरा बुधई। राशब्द का अर्थ है जिनमें जिनके एक 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 लोम कूप में संपूर्ण विश्व भरे हैं वे महाविष्णु तथा उनके अंदर निवास करने वाले विश्व के प्राणी और संपूर्ण विश्व। धा शब्द धात्री तथा माता का वाचक है। राधिका कहती हैं अतएव मैं ही महाविष्णु विश्व के संपूर्ण प्राणी तथा समस्त विश्व की धात्री माता ईश्वरी मूल प्रकृति हूँ। ये सब देवियों की मूल रूपा हैं भगवान कहते हैं। पंच लक्ष्मी शिवा धात्री सावित्री च पृथक पृथक गोलो की स्वयं राधा राशि राशेश्वरी सदा। श्री राधा देवी राधोपनिषद में है कृष्णेन आराध्यत इति राधा कृष्णम समाराधयति सदेति राधिका। कृष्ण इनकी आराधना करते हैं इसलिए ये राधा हैं और ये सदा कृष्ण की समाराधना करती हैं इसलिए राधिका कहलाती है। स्कंद पुराण में है आत्मा राम श्री कृष्ण से ध्रुव आत्मा से राधिका ये राधा यश्च कृष्णो रसाभिर्दयिश्चैकः कीर्णार्थं द्विधाभूत देव यथा छाया शोभमाना। ये उपनिषद है। श्री राधिका जी रस सिंधु श्री कृष्ण का देह एक है, केवल लीला के लिए दो स्वरूप प्रकट है। जैसे शरीर अपनी छाया से सुशोभित हो, हमारा ये महान पुण्य है और हम सब राधा जी की के बड़े ही कृपा भाजन हैं जो उनका इस प्रकार स्मरण कर रहे हैं। अंत में आज इस राधा जी के प्राकृत महोत्सव के दिन हम उनसे प्रार्थना करें। जिन राधा जिन श्री राधा के करें नित श्री हरि गुणगान जिनके रस लोभी रहें नित रसमय रस खान प्रेम भरे ही सो करें श्रवण मनन नित ध्यान सुनत नाम राधा तुरत भूलें तन को भान करें नित्य दृग अलि मधुर मुख पंकज मधुपान करें नित्य दृग अलि मधुर मुख पंकज मधुपान प्रमुदित पुलकित रहें लखी अधर मधुर मुस्कान। जो आत्मा हरि की परम जो नित जीवन प्राण विसर्य पुन को रहें नित जिनके बस भगवान। सहज दया मई राधिका सो कर कृपा महान करत रहें मो अधम को सदा चरण रजदान। ये अंत में ये व्यास जी का बड़ा सुंदर प्रार्थना का पद है। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं बैठी रहूं कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं या रज शिव सनकादिक लोचन सूरज शीश चढ़ाऊं व्यास स्वामिनी की छवि निरखत बिमल बिमल जस गाऊं। बोलो परम प्रेम की मूर्तिमान सत्यनमयी मूर्तिमा श्री राधिका की जय जय।
अब श्री राधिका राधाष्टमी के दूसरे दिन नवमी का प्रवचन सुने।
मगन गोपालं बृंदारण्य पुरंदरं श्री गोविंदं प्रपद्येहं दीनानुग्रह कारकं। सब लोग सभी जीव स्वाभाविक सुख के आकांक्षी हैं, पर उसके साथ एक बात और जोड़ दी जाती है, सुख चाहते हैं सब, पर वो सुख चाहते हैं नित्य और पूर्ण। इसीलिए कोई भी जगत का किसी भी क्षेत्र का मनुष्य, देवता, सुर असुर, नाग नर किन्नर अपनी स्थिति में संतुष्ट नहीं है। आत्मा, ब्रह्म, भगवान ये नित्य हैं और पूर्ण हैं। इसलिए सिद्धांत है कि आत्मा की तृप्ति बिना नित्यता और पूर्णता के नहीं हो सकती। बड़े से बड़ा विद्वान, बड़े से बड़ा अधिकारी, बड़े से बड़ा कुटुंबी, बड़े से बड़ा अमीर, उनसे पूछिए, वो अगर सच कहेंगे तो ये कहेंगे कि कुछ कमी है, इतना सा पूरा हो जाए तो आराम, तो आनंद मिले, और ये कुछ कमी आगे से आगे बढ़ती चली जाती है, इसकी पूर्ति कभी होती नहीं। क्यों? कि प्रकृति का राज्य है ना, प्रकृति के राज्य में पूर्णता नहीं है। परमात्मा पूर्ण है, प्रकृति उपाधि नित्य परिवर्तनशील है, खेल बदलते हैं, पर जो खेलने वाला वो नहीं बदलता। तो जब तक खेलने वाले के साथ हम न मिल जाएं, तब तक हमें किसी अवस्था में भी तृप्ति प्राप्त हो यह संभव नहीं है। इंद्र भले बन जाएं, बल्कि ये एक रहस्य है, और बड़ा रहस्य होने पर भी ये खुला रहस्य है। वो यह है कि जितना जितना भौतिक जगत में प्राकृतिक पदार्थों के द्वारा मनुष्य संपन्न होता है, उतना उतना उसका अभाव बढ़ता है। जिस आदमी के पास 10 रुपए महीने की आमदनी है, वो 100 तक में मान लेता है कि भाई 100 हो जाए तो काम हो जाए, पर जिसके करोड़ रुपए हैं पास में और करोड़ की आमदनी है, वो क्या सोचाएगा? स्वाभाविक बात है, वो चाहेगा कि 100 करोड़ हो जाए, उससे भी ज्यादा हो जाए। तो ये नियम है, ये किसी व्यक्ति की बात नहीं, ये नियम है कि जो जिस अवस्था में है उसमें अपूर्णता का अनुभव करता है और आगे बढ़ना चाहता है। ये प्रकृति का नियम है, निश्चय ही सभी और सभी की बात है, सवाल की बात नहीं। ये जितना जितना प्रकृति का राज्य है, प्रकृति के राज्य में जो जो अभाव की पूर्ति होती है, त्यों त्यों अभावों की वृद्धि होती है। जैसे बहुत मामूली बात, किसी के लड़का नहीं है, पुत्र नहीं है, पुत्र का अभाव है, वो चाहता है पुत्र मिले, पुत्र न होने का दुख है, बड़ी वेदना है, पर पुत्र न होने भर की वेदना है। पुत्र हो गया, अभाव की पूर्ति हुई ना, पर अभाव की पूर्ति होते ही पुत्र ने आते ही मानो कहना शुरू किया कि देखो मुझे पालना है, मुझे पढ़ाना है, मुझे बड़ा करना है, मुझे योग्य बनाना है, मेरा विवाह करना है, शादी करनी है, मुझे फिर अपना वारिस बनाना है, और मेरे लिए मुख्य मुक्ति जी इकट्ठी करके सब मरना है। ये पुत्र ने पैदा होते ही अपनी पुत्रता की भाषा में, चाहे वाणी न खुली हो, वो कह देता है। छोटी सी चीज मोटर नहीं, दूसरों के देखते मोटर मन चलता है भाई होनी चाहिए, अब कहीं से चंदा वंदा करके मोटर भी ले ली, पर मोटर जो बन गई घर में आकर के, अब उसे गैरेज चाहिए, शोफर चाहिए, पेट्रोल चाहिए, वो मोबिल ऑयल चाहिए, न मालूम क्या क्या चाहिए, टैक्स चाहिए, और उसकी जोखिम बेचनी चाहिए। एक मोटर ने कितने अभाव पैदा कर दिए। इसी प्रकार जगत की प्रत्येक परिस्थिति, चाहे वो कितनी ही प्रचुरता को लिए हुए हो, है अभावमयी। ये सिद्धांत है। इसलिए जो सुख चाहते हम, वो सुख पूर्ण और नित्य किसी अवस्था में इंद्र को भी नहीं मिल सकता। बादशाह की बात तो अलग है। क्यों नहीं मिल सकता? वो दुख क्या है? प्रतिकूलता की भावना दुख है और चाह की आपूर्ति में प्रतिकूलता है। हम जो इच्छा करते हैं, कोई भी इच्छा की पूर्ति न हो इसका नाम प्रतिकूलता है। जल का गिलास मांगा और समय पर नहीं आया, मामूली बात प्रतिकूलता हो गई, दुख हो गया, क्षोभ हो गया, गुस्सा आ गया, कामा क्रोध हो जाए थे। तो ये चाह की आपूर्ति जो है ये दुखदायक नहीं होती है, और भोग जगत में चाह कभी मिट सकती नहीं। तो चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो जग शहंशाह। एक सुंदर सा दृष्टांत है। एक महाराज भर्तृहरि संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास ग्रहण करने के पश्चात वो विचरते थे ऐसे ही जहां कहीं भी, तो किसी एक किसान के खेत में एक दिन जा बैठे। कोई घर द्वार तो था नहीं, जहां मन चला छाया दिखी, थके से बैठ गए। हुआ क्या उस दिन कि किसान के एक सोने की मोहर खो गई थी, एक गहना खो गया था कोई। उस दिन वो गहना उसे मिल गया। गहना 200-400 रुपए का था, इतनी पूंजी बड़ी से बड़ी। तो गहना जब उसे मिल गया तो स्त्रियों में श्रद्धा ज्यादा होती है। स्त्री ने कहा किसान की पत्नी ने कि देखो जी, अपने खेत में आज एक महात्मा के चरण टिके हैं, ये उसका फल है कि खोया गहना मिल गया। तो कहा फिर उनको कुछ देना चाहिए। अरे महात्मा ने इतनी कृपा की तो कुछ देना चाहिए, तो दें क्या? तो उनके घर में सबसे बड़ी चीज थी एक सोने की मोहर, 150 रुपए की थी। अब 500-400 का गहना मिला, 150 की चीज दे दें। तो वो किसान था जाट, वो मोहर लेकर के खेत में गया। खेत में जा करके उसने महाराज को दंडवत किया, सन्यासी जी को, और मोहर सामने रख दी। महात्मा जी बोले, भैया ये क्या है? बोले, महाराज कुछ नहीं है, कि तो आपके चरण टिकने से बड़ा उपकार हो गया, खोया हुआ गहना मिल गया। तो घर वाले ने कहा कुछ भेंट दे दे सीधा बेचारा, तो ये भेंट रखी है। बोले, ये है क्या? कहा, ये तो सोने की मोहर है। तो बोले, भैया किसी भिखमंगे को दे दो। अब उसके समझ में नहीं आई कि भिखमंगा क्या होता है। अरे कॉपियन लगाए बैठे इनके पास कोई सामान नहीं, कोई पदार्थ नहीं, कोई खाने पीने की चीज नहीं, पेटी बेटी नहीं, तो कहते भिखमंगे को दे दो। तो ये क्या भिखमंगे नहीं है, मन में सोचा उसने, पर बेचारा बोल नहीं सका। बोले, महाराज आप ही ले लो, किसी को बांट दिया। बोले, भैया क्यों आफत मोल लें, क्यों क्यों कीचड़ में हाथ करें, क्यों फिर धोएं, किसी किसी भिखमंगे को दे दो।